का था, रूप वही रूप नया।
लेकिन मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है। बस एक सपना था बचपन का कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। मैंने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक छोटे से चौल में शिफ्ट हुआ। मैं वापस से फेल हुआ और ये जर्नी चलती रही है। 2 साल निकल चुके हैं, 2 आइडिया फेल हो चुके हैं, काफी सारा लोन ले चुका हूँ, काफी बड़े कर्ज में बैठा हुआ हूँ। 2015 हो चुका है, 4 साल निकल चुके हैं, अभी मेरे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ चुका है। लेकिन मैंने, मेरी जो ड्रीम थी वो ड्रीम ज्यादा बड़ी थी मेरी, वो ड्रीम ने मुझे जिंदा रखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मीना है और मैं एटमबग टेक्नोलॉजीज का CEO एंड फाउंडर हूं। जावेद साहब की मुझे एक लाइन याद आती है जो मुझे अक्सर मोटिवेट करती है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। मैं राजस्थान के बहुत ही छोटे से टाउन को बिलोंग करता हूँ, दौसा, शायद आपको पता भी नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा टाउन है। जब मैं छोटा था तब से मुझे पता है वहाँ पर किस टाइप की प्रॉब्लम मेरी फैमिली ने फेस की है, किस टाइप की प्रॉब्लम मैंने फेस की है। जब मैं छोटा था तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे लाइट नहीं आ रही है, 2 घंटे के लिए पूरे दिन में लाइट आती थी दोस्तों, और हम लोग उसका इंतज़ार करते थे कब लाइट आएगी, कब हम मोटर ऑन करेंगे, कब हम पानी भरेंगे, कब हम खेती में इरिगेशन करेंगे। मेरा बैकग्राउंड भी फार्मिंग का ही है और मैं गांव के लोगों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पा रहा था बचपन से ही। इसके अलावा मेरे कुछ शौक़ थे, मुझे काफ़ी शौक़ था खिलौनों से खेलने का, कुछ चीज़ें अपने हाथों से क्रिएट करने का। तो मैंने मिट्टी के खिलौने बनाए, लकड़ी के खिलौने बनाए, काफ़ी चीज़ों को मैंने तोड़ा है ये क्यूरियोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके अंदर क्या है ऐसा। और इस चीज़ के चलते मुझे कई बार थप्पड़ें पड़ी हैं घर पे, कई बार पिटाई हुई है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने वो हॉबी आज भी कंटिन्यू रखी हुई है। मुझे मौका मिला अच्छी जगह पे स्कूलिंग करने का, वहाँ पर भी मैंने कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को लेना चालू किया एंड अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखा। कॉलेज में आया, कॉलेज में मुझे और अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, प्रोग्रामिंग सीखा, एल्गोरिदम बनाना सीखा, मोटर डिज़ाइन करना सीखा। अभी वो मिट्टी और लकड़ी के खिलौने नई चीज़ों से बदल गए, नाउ अभी ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है और रोबोटिक्स है। लेकिन मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है। बस एक सपना था बचपन का कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, एक बड़ी कंपनी ओपन करनी है और अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। मैंने बचपन से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। मैं बचपन से चाहता था कि ऐसी कंपनी ओपन करूं, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाऊं और इस प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर सॉल्व कर पाऊं। मैंने टेक्नोलॉजी तो सीख लिया, लेकिन मेरे को ये चीज़ अच्छे से पता थी अगर इस टेक्नोलॉजी को मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आता है प्लेसमेंट का टाइम। प्लेसमेंट में मैंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं। इंडिया को ज़रूरत है ऐसी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, तो इस चीज़ को मैंने अपने ड्रीम में ऐड किया। मेरा ड्रीम और बड़ा हो गया कि अभी मुझे टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी है, प्रोडक्ट कंपनी बनानी है और प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। फाइनली मेरा सिलेक्शन इसरो में हो चुका था कॉलेज के दौरान ही, और मेरी फैमिली हमेशा से चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट अधिकारी बनूं, वो काफ़ी खुश थे इस चीज़ से। लेकिन मेरे सपने शायद अलग थे और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसरो ज्वाइन नहीं करूँगा, अपने खुद के कंपनी स्टार्ट करूँगा। और मैंने घर पर झूठ ही बोला, मैंने बोला कि मैंने 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया है, 1 साल के बाद ज्वाइन कर लूँगा जिससे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये डिसीजन मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कोई इन्वेस्टर था जो मुझे फंडिंग देने वाला है। खाली हाथ ही मैंने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक छोटे से चौल में शिफ्ट हुआ, जहाँ पर रेंट अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल था। एक मुंबई जैसी सिटी में अकेले स्टार्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरे सपने काफ़ी बड़े थे। मैं एक चांस देना चाहता था, स्टार्टिंग की, सोचा कि 1 साल में हालात बदल जाएंगे और 1 साल में मैं अपने फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगा कि हाँ ये चीज़ है जो मेरा सपना है और जो मुझे करनी चाहिए। 1 साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, देखते ही देखते बहुत ही तेज़ी से 1 साल निकल चुका है और मैं अपने ज़िंदगी के बहुत ही डाउन फेज में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मेरे पास पैसा भी नहीं है, रेंट देने के लिए जगह भी नहीं है, जो आइडिया से शुरुआत की थी वो आइडिया भी फेल हो चुका है। अभी मैं पूरी मेहनत से लग गया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्योंकि ये चीज़ आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि गलती कहाँ पे हुई है, वो कोई और नहीं बताने वाला था मुझे, वो मुझे खुद ही आइडेंटिफाई करना था गलती कहाँ पे की है। मैंने देखा कि मैंने अच्छे से बिजनेस मॉडल तो कभी बनाया ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये गलती मैं दूसरा आइडिया में नहीं करूँगा। तो मैंने इस बार एक और आइडिया आइडेंटिफाई किया जो मुझे मेरी ड्रीम पूरी करने में हेल्प करने वाला था, और मैंने पहली बार बहुत ही शिद्दत से अपना बिजनेस मॉडल बनाया, उसमें पूरा टाइम दिया, पूरी थॉट डाली, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, काफ़ी सारा एडवाइसर और सीनियर लोगों से मिला, लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं निकला, मैं वापस से फेल हुआ। और ये जर्नी चलती रही है, 2 साल निकल चुके हैं, 2 आइडिया फेल हो चुके हैं। 2015 आ चुका है, मैं 2011 में ग्रेजुएट हुआ था, 2015 तक मेरा स्ट्रगल चलता रहा। इस पूरे स्ट्रगल में मैंने लगभग 4 से 5 बार आइडियाज फेल किए हैं और हर बार मैंने कुछ सीखा है। और मैंने ये इंश्योर किया है कि जो गलती मैंने पहले की है वो गलती मैं अब नहीं करूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेलियर से क्या सीखते हैं। और दूसरी लर्निंग मेरे लिए ये थी कि फेलियर्स तो आएंगे ही, आपने जर्नी ऐसा चूज़ किया है, आपने ड्रीम इतना बड़ा देखा है, तो फेल तो होंगे ही आप। वो आप मान लीजिए कि आप फेल होंगे, 10 बार ही फेल होंगे, 100 बार ही फेल होंगे, आपको हार नहीं माननी है। बस आपको इतना इंश्योर करना है कि आप हर वक्त हर एक फेलियर से एक नई चीज़ सीख रहे हैं और वो गलती वापस से नहीं दोहरा रहे। इसके अलावा जल्दी फेल होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना जल्दी फेल होंगे उतना ही आपका रिसोर्सेज बचेंगे, उतनी आपकी एनर्जी बचेगी, उतना ही आपका टाइम बचेगा। तो आपको जल्दी आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। अगर आइडिया ठीक नहीं है, गलत जा रहे हो, तो तुरंत स्टॉप करो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आइडिया चेंज, मैंने खुद अपनी लाइफ में 5 आइडियाज चेंज किए, तब जाके मुझे अपना 6ठा आइडिया मिला है जो आज सक्सेसफुल हुआ है। तो आइडिया बदलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये जर्नी चलता रहा, 2015 हो चुका है, 4 साल निकल चुके हैं, अभी मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और मैं अभी तक काफ़ी सारा लोन ले चुका हूँ, काफ़ी बड़े कर्ज में बैठा हुआ हूँ। अगर कोई भी मेरी जगह होगा तो मुझे लगता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि चलो भाई छोड़ के निकलते हैं दुनिया से, फेस ही नहीं करना है, इतना ज़्यादा उधार हो चुका है। लेकिन मैंने, मेरी जो ड्रीम थी वो ड्रीम ज़्यादा बड़ी थी मेरे लिए, वो ड्रीम ने मुझे ज़िंदा रखा और वो ड्रीम मैं हर दिन देखता था। वो उस ड्रीम को बार बार देखने से मुझे एनर्जी मिलती थी कि भाई एक दिन और, एक दिन और, एक आइडिया और चलेगा। इस बार एक नया आइडिया मुझे क्लिक हुआ जो कि था एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल लर्निंग्स मेरे रहे और वो सारे टेक्नोलॉजिकल लर्निंग्स मैंने इस बार इस आइडिया में डाले। मैंने वापस से बिजनेस मॉडल बनाया और इस बार मैंने एक चीज़ और की। इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट पे काम चालू करता, मैं 10-15 लोगों से मिला, जिसमें रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से। मैंने बोला कि भाई मेरा ये आइडिया है, एक एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सीलिंग फैन मैं बना रहा हूँ, क्या आप लोग खरीदोगे। मैंने आइडिया को पूरा वैलिडेट करने की कोशिश की। इस बार मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, काफ़ी सारे क्रिटिकल फीडबैक्स भी मिले। अगर वो क्रिटिकल फीडबैक मैं नहीं लेता और प्रोडक्ट बना देता तो मैं वापस से फेल हो जाता। तो इस बार मेरी पुरानी लर्निंग्स मेरे को काम आ रही थी। मैंने काफ़ी फीडबैक कलेक्ट किया और लगभग मैंने 50 प्रोटोटाइप बनाए उस प्रोडक्ट के, तब जाके मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिले हैं जो लोगों को चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। आपको उससे कनेक्ट होना ज़रूरी है, उसे फीडबैक लेना ज़रूरी है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं लोगे उनसे और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अगले स्टेज पे पहुंच चुका होगा और आपको पता लगे कि यार प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है, तो उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ जा रही थी, स्मूथली जा रही थी। मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को भी आइडिया पिच किया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करता, 1500 प्री ऑर्डर मैंने बुक कर लिए थे। ये मेरी सबसे पहली सक्सेस थी इन 4 सालों के अंदर। और इस सक्सेस के साथ मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मिलने के लिए गया। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने बोला कि भाई पंखे में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर बैठी हैं, तुम कैसे कम्पीट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे तुम, पंखा कोई ऐसा नहीं है कि 10-15 पंखे बना के मार्केट में बेचने, तुम्हें लाखों में पंखे बनाने पड़ेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कैसे ब्रांडिंग करोगे, कैसे सेल्स करोगे, ऐसे 10 तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार मेरे पास प्रूफ था कि भाई मेरे पास 1500 प्री ऑर्डर्स बुकड हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने बिलीव किया मेरी बातों पे, फंडिंग ली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, 5 लोगों की छोटी सी टीम थी। आज जो 5 लोगों की छोटी सी टीम 300 लोगों की टीम बन चुकी है। अगर आप मेरी स्टोरी देखोगे तो मैंने चौल से स्टार्टिंग की थी। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 2011 में, एक छोटे से चौल से स्टार्टिंग की थी, कोई पैसा नहीं था, बीच में कर्ज में भी डूबा। लेकिन आज मैंने एक बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश कर रखी है जिसमें 300 लोग काम करते हैं और हम लोग 4 लाख से ज़्यादा पंखे मार्केट में बेच चुके हैं, जो देश की एनर्जी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और हमारी कंपनी का टर्नओवर अभी शायद 100 करोड़ पहुंच जाएगा, बट हमारे मिशन और ड्रीम बहुत बड़े हैं, हमें कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो मेरा यही आपसे वापस से रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए।